बच्चों, टार्जन की कहानी का पहला हिस्सा आप कैसेट कहानी नंबर 9 में सुन चुके हैं। अगर नहीं सुना तो पहले कैसेट कहानी नंबर 9 जरूर सुनें, ताकि आप इस कहानी का पूरा मजा ले सकें। अब हम आपको टार्जन की कहानी के पहले हिस्से का खुलासा सुनाए देते हैं। बहुत सालों की बात है, जब अंग्रेज सरकार ने अपने एक अफसर जॉन क्लेटन को तरक्की देकर अफ्रीका जाने का हुक्म दिया। जॉन क्लेटन की बीवी एलिस उस जमाने में बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए वो उसको साथ नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन एलिस के बेहद इसरार पर जॉन क्लेटन उसको भी साथ ले जाने पर राजी हो गया। ये लोग फाल्डा नामी समंदरी जहाज पर अफ्रीका जा रहे थे कि रास्ते में जहाज के हबशी मल्लाहों ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी और कप्तान को मारकर जहाज अपने कब्जे में ले लिया। चूंकि जॉन क्लेटन ने एक मर्तबा एक हबशी मल्लाह माइकल की जान बचाई थी, इसलिए जॉन क्लेटन और एलिस की जान तो बच गई, मगर उन दोनों को जबरदस्ती उनके सामान और बंदूकों समेत अफ्रीका के एक वीरान जंगल में उतार दिया गया। फाल्डा जहाज उसके बाद तूफान में घिरकर डूब गया और इसीलिए अंग्रेज सरकार को यह यकीन हो गया कि जॉन क्लेटन और एलिस जहाज के साथ खत्म हो चुके हैं। इधर जॉन क्लेटन ने जंगल में दरख्त काटकर अपने रहने के लिए लकड़ी का केबिन बना लिया, ताकि जानवरों से महफूज रह सके। लेकिन एलिस हर वक्त डरती रहती थी, क्योंकि आए दिन गोरिले उन पर नाकाम हमले करते रहते थे। चंद महीनों बाद एलिस के यहां बच्चा पैदा हुआ। बच्चा 1 साल का हो गया, लेकिन एलिस अब बहुत बीमार रहने लगी थी और फिर एक रोज वो मर गई। जॉन क्लेटन अभी उसके गम में रो रहा था कि गोरिलों के बादशाह करचाक ने इस मौके से फायदा उठाकर उसे भी खत्म कर दिया। करचाक जॉन क्लेटन के बच्चे को भी खत्म कर देना चाहता था, लेकिन एक गोरीली काला ने झपट कर बच्चे को उठा लिया, क्योंकि उसी रोज उसका अपना बच्चा मर गया था। उसके बाद काला ने ही उस बच्चे को पाला, और चूंकि गोरीलों की जबान में सफेद चमड़ी वाले को टार्जन कहते हैं, इसलिए वो बच्चा इसी नाम से पुकारा जाने लगा। गोरीलों में पल कर टार्जन एक बहुत मजबूत और ताकतवर जवान बन गया। इसी दौरान उसने जॉन क्लेटन का बनाया हुआ केबिन देखा और फिर अक्सर वहां जाने लगा। वहां पड़ी हुई अंग्रेजी की किताबों से उसने खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना सीखा और वहां पड़े हुए चाकू को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। टार्जन यूं तो गोरिलों के यहां पला था, लेकिन एक गोरिला ऐसा भी था जो कि पहले दिन से उसकी जान का दुश्मन था, और ये था काला का मियां तुबलात। उसने कई दफा टार्जन को मारने की कोशिश की, लेकिन काला ने हमेशा उसको बचा लिया। एक दिन वो केबिन से लौट रहा था कि उसे दूर एक शोर सुनाई दिया। वो तेजी से दरख्तों पर लटकते हुए उस तरफ पहुंचा।
नहीं तो बुला, तेरे लिए नहीं है, मेरे टार्जन के लिए है, मेरे बच्चे के लिए।
वो बच्चा नहीं है, मुझे दे दे।
तू आ गया टार्जन, ये ले, मैंने तेरे लिए बचा कर रखा है।
खबरदार काला, इसको मत दे, मैं तुझे मारूंगा काला।
टार्जन ने तुबलात की गर्दन दबोच ली। तुबलात ने दोनों बाजुओं में उसे जकड़ लिया। टार्जन का सांस बंद होना शुरू हो गया। जकायक उसे ख्याल आया कि उसके पास चाकू है। उसने एक हाथ से चाकू निकाला और पहला वार तुबलात के पेट में किया। उसकी गर्दन ढीली हो गई। टार्जन ने इसका फायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत से 3 बार चाकू उसके सीने में घोंप दिया। तुबलात का जिस्म लड़खड़ाया और एक दर्दनाक चीख के साथ वो जमीन पर ढेर हो गया। टार्जन ने उसके सीने पर अपना पांव रखा और
मैं टार्जन हूं, मैं दुश्मनों को मार डालता हूं। काला मेरी मां है, जिसको किसी ने कुछ कहा तो मैं उसको खत्म कर दूंगा, समझे?
सब कोयले खामोश रहे, करचाक भी चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखें टार्जन के चाकू पर थी, जिस पर से उसके साथी का खून टपक रहा था। टार्जन रोज केबिन में जाकर किताबें पढ़ता रहा। अब उसने ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वो जानवर नहीं इंसान है, लेकिन उसने अपने जैसा और कोई नहीं देखा था। एक दिन उसे ये मौका भी मिल गया। आदमपुर हबशियों का एक कबीला जंगल के इस हिस्से में आ बसा। उन्होंने अपना एक गांव बना लिया और आराम से रहने लगे। उनके सरदार का बेटा कुलुंगा तीर कमान हाथ में लिए शिकार की तलाश में फिर रहा था कि उसको काला नजर आ गई। उसने फौरन उसका पीछा शुरू कर दिया और मौका देखकर एक तीर काला की तरफ छोड़ दिया, मगर तीर निशाने पर लगने की बजाय काला का कंधा छूता हुआ निकल गया। दूसरे गोरिल्ले उसकी तरफ पड़े, काला पलट कर एक खूंखार चीख के साथ कुलुंगा पर चढ़ती थी। तेजी के साथ दूसरा तीर काला के सीने में उतार दिया। दूसरे गोरिल्ले ये देख के कुलुंगा पर हमला करने पड़े। कुलुंगा दहशत लगा होकर भागा, गोरिल्ले उसका पीछा कर रहे थे। कुलुंगा तेज तेज दौड़ता हुआ उनकी जद से बाहर निकल गया। गोरिल्ले वापस गए और काला की लाश के गिर्द घेरा डाल दिया। इतनी देर में टार्जन भी वहां पहुंच गया।
क्या हो रहा है, क्या हुआ काला? मां, मेरी मां, मेरी मां!
ये किसने किया, किसने मारा मेरी मां को? बताओ, बताओ किसने मारा मेरी मां को? मेरी मां, और कच्चा, ये कैसे हुआ?
काला का कातिल एक काले रंग का जानवर है, उसके बदन पर बाल नहीं है।
कातिल के पांव के निशान देखकर टार्जन समझ गया कि वो एक इंसान है। वो उसी वक्त उसके ताकुब में रवाना हो गया। कई घंटों के सफर के बाद वो आदमखोर हबशियों के गांव के पास पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के किनारे उसे अपने जैसा काले रंग का इंसान नजर आया। टार्जन समझ गया कि यही उसकी मां का कातिल है, क्योंकि काले आदमी के पास वही तीर थे जिससे काला हलाक हुई थी। टार्जन उसको मार डालने के लिए मचल रहा था, लेकिन उसने ये फैसला किया कि पहले वो ये मालूम करेगा कि ये कहां से आया है, ताकि वो ये जान सके कि इंसान किस तरह रहते हैं। टार्जन छुपकर उसका पीछा करता रहा। अचानक उसे एक खुली जगह नजर आई जिसमें बहुत सी झोपड़ियां थी और इस हबशी जैसे और लोग काम में मसरूफ थे। टार्जन ने सोचा इसको वहां पहुंचने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। उसने दरख्त से एक रस्सी का फंदा फेंका जो कि सीधा कुलुंगा के गले में पड़ा। टार्जन ने एक झटके से रस्सी को खींचा और कुलुंगा को फांसी दे दी। ये था उसकी मां को हलाक करने का इंतकाम। अब टार्जन गांव के करीब एक घने दरख्त पर छुपकर हबशियों को गौर से देखने लगा। कुछ हबशी औरतें खाना पका रही थीं, कुछ दाना कूटकर आटा बना रही थीं, कुछ जानवरों की खालें सुखा रही थीं। हबशी मर्द सिर्फ पहरा दे रहे थे, सबने जानवरों की खालें अपने कमर के गिर्द बांधी हुई। आखिर में उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो कि एक बड़ी सी कढ़ाई में लाल लाल मसाला पका रही थी। एक तरफ कुछ तीर रखे हुए थे। वो औरत एक तीर उठाती, उसकी नोक मसाले में डुबोती और एक तरफ रख देती, मगर अपने हाथों पर नहीं लगने देती। टार्जन समझ गया कि इन तीरों में यही खास बात है, वरना एक छोटे से तीर से काला इतनी जल्दी न मरती। वो सोच रहा था कि ये तीर कैसे हासिल करे कि अचानक एक शोर हुआ और गांव वाले उस दरख्त की तरफ भागे जिसके नीचे कुलंगा की लाश पड़ी थी। तारजन फुर्ती से कूदा, कढ़ाई को लात मारी और बहुत से तीर और कमान उठाकर दरख्तों में गायब हो गया। अब तारजन को एक नया हथियार मिल गया था। वो रोज तीर कमान की मशक करता और चंद दिनों में वो इतना माहिर हो गया कि वो दौड़ते हुए जानवरों को भी मार सकता था। एक दिन एक खौफनाक शेर ने उसका रास्ता रोक लिया। ये उसका पुराना दुश्मन साबुर था। उसकी पीली पीली आंखें तारजन पर जमी हुई थी। वो अपनी लाल लाल जबान बार बार होठों पर फेरता और बार बार दुम हिलाता। तारजन ने अपनी कमान उतारी और एक तीर छोड़ दिया। ऐन उसी वक्त साबुर ने उस पर हमला कर दिया। तारजन ने दूसरा तीर मारा। तीर के लगते ही साबुर तारजन के ऊपर आ गया और अपना जबड़ा खोलकर तारजन की गर्दन पकड़ने को था कि तारजन ने अपना चाकू निकालकर उसे घोंप दिया। और साबुर तड़प तड़प कर मर गया। तारजन ने साबुर के सीने पर अपना पांव रखा और सर उठाकर एक जीते हुए गोरिल्ले की आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सब गोरिल्ले जमा हो गए।
देखो सर, जाग के गोरिल्लों देखो, तारजन की ताकत देखो। तुम में से कोई है जो साबुर को मार सकता? तारजन तुम सबसे ताकतवर है, जंगल के बादशाह से भी ज्यादा। है कोई मेरा मुकाबला करने वाला? बोल कच्चा, तारजन को अपना सरदार मानता है?
गुस्ताख बदतमीज, तेरी ये मजाल मुझसे टक्कर लेता है, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा।
और कच्चाक ने उस पर हमला कर दिया। सारा कबीला सांस रोके इस देव जैसे हैवान और तारजन की लड़ाई देखने लगा। तारजन के तीर कमान शेर के साथ लड़ाई में गिर गए थे। अब वो सिर्फ चाकू और अपनी अकल से कच्चाक का मुकाबला कर रहा था। वो एक दूसरे की तरफ बढ़े। उनके जिस्म टकराने को थे कि तारजन ने उछलकर चाकू उसके सीने में घोंप दिया। उसका ख्याल था कि गोरिल्ला फौरन गिर पड़ेगा, लेकिन करचाक आखिर कबीले का बादशाह था, उसमें बड़ी जान थी। इससे पहले कि तारजन अपना चाकू उसके जिस्म से निकालता, करचाक ने जोर का थप्पड़ मारा। अगर पड़ गया होता तो तारजन की खोपड़ी फट जाती, मगर तारजन एन वक्त पर झुक गया। करचाक का वार खाली गया और तारजन ने अपनी पूरी ताकत से उसके पेट में झूसा मारा। करचाक की टांगे लड़खड़ाई, चाकू अभी तक उसके सीने में छुपा हुआ था। उस पर भी उसने तारजन को पकड़कर अपने लंबे नकीले दांत उसके गर्दन की तरफ बढ़ाए। तारजन ने करचाक का गला पकड़कर दबाना शुरू किया। करचाक ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता तारजन पर हावी होता जा रहा था। उसके नुकीले दांत अब तारजन की गर्दन से सिर्फ एक इंच दूर रह गए। तारजन ने करचाक की गर्दन मजबूती से पकड़े हुए चाकू के दस्ते पर कुछ जोर से मारी। चाकू सीधा करचाक के दिल में उतर गया। करचाक के जिस्म ने एक जबरदस्त झुरझुरी ली और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। सारे गोरिल्ले हक्का बक्का करचाक की लाश को देख रहे थे। तारजन ने अपना पैर करचाक के सीने पर रखा और अपनी जीत का ऐलान कर दिया। और यूं गोरिल्लों ने तारजन को अपना सरदार मान लिया। तारजन ने सबसे पहले साबुर की खाल उतारी और उसे सुखाकर अपनी कमर के गिर्द बांध लिया। ये वही लिबास था जो उसने आदमपुर हबशियों को पहने देखा था। तारजन सरदार तो बन गया, लेकिन उसे अब गोरिल्लों से नहीं इंसानों से ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त केबिन में गुजारने लगा। एक दिन एक दराज में उसे एक छोटा सा बक्स मिला, जिसमें एक जवान आदमी का फोटो, एक सुनहरी लॉकेट, कुछ खत और एक छोटी सी किताब थी। खत और किताब की लिखाई तो उसकी समझ में नहीं आई, वो उसने वापस रख दिए। लॉकेट उसने गले में पहन लिया और फोटो को वो बड़े गौर से देखता रहा। न जाने क्यों ये तस्वीर उसे बहुत पसंद आई। उसे नहीं मालूम था कि ये उसके बाप की तस्वीर है और वो किताब जो उसने वापस रख दी थी जॉन क्लेटन की डायरी थी। एक दिन टार्जन केबिन की तरफ आ रहा था कि उसे दूर एक बागबानी जहाज समंदर में खड़ा नजर आया। वो फौरन एक तरफ पर चल गया और उसने देखा कि दो कश्तियां किनारे से लगी हुई और उसमें से उस जैसे सफेद चमड़ी वाले इंसान उतर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा था जिसके बाल सफेद थे और आंखों पर ऐनक थी। दूसरा एक लंबा तड़ंगा नौजवान था जो बूढ़े आदमी को सहारा देकर उतार रहा था। उनके बाद एक मोटी काली हबशन उतरी जिसने शोक रंगों के कपड़े पहन रखे थे। आखिर में एक लड़की उतरी जिसकी उम्र 19-20 साल की थी। कश्ती का मल्ला एक ठेंगना करख चेहरे का आदमी था। इन लोगों का सामान उसी ने उतरवाया और दूसरी कश्तियों के मल्लाहों के साथ मिलकर केबिन तक पहुंचा दिया। टार्जन उन सबको बहुत गौर से देखता रहा, खास तौर पर जवान आदमी को, क्योंकि उसकी शक्ल उस फोटो से मिलती थी जो उसे केबिन में मिला था। लेकिन जब उसने जवान लड़की की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। नीली आंखें, गुलाबी रंगत और तीखे नक्श वाली लड़की उसे बहुत हसीन लगी। वो लोग आपस में बातें करने लगे। करप चेहरे वाले आदमी ने कहा,
जाओ प्रोफेसर पोर्टर, ये रहा तुम्हारा सामान। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते।
मगर ये तो सरासर जुल्म है स्नाइप्स, तुम हमें जंगल बयाबान में कैसे छोड़ सकते हो?
जिसके बुड्ढे, मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, यही बात है। ज्यादा परवर की तो बांध संभाल कर बात कर कमीने, ये तेरे बाप के बराबर है। बकवास मत करो विलियम क्लेटन, यहाँ तेरी अपनी नहीं चलेगी।
बेटे विलियम, तुम इस बदतमीज के मुंह ना लगो।
बोलता सा, हम कब तक इसकी पगपग सुनते रहे? पहले इसने हमारा खजाना छीना, फिर हमें इस वीराने में ला फेंका और अब जबान चला। इस बदमाश को फांसी लगनी चाहिए।
तू इस तरह चुप नहीं होगा क्लेटन।
टार्जन ने देखा कि ठिंगने आदमी ने पिस्तौल निकाला और जवान आदमी की तरफ निशाना बांधा। टार्जन ने फौरन अपनी कमान से एक तीर छोड़ा। तीर ठिंगने आदमी के सर को तकरीबन छूता हुआ केबिन के दरवाजे में लगा। पिस्तौल उसके हाथ से गिर गया। विलियम क्लेटन ने लपक कर उसे उठा लिया।
कमीने, अब यहां से तबाह हो जाओ और ये मत भूलना कि जिस बंदरगाह से तुम अपना जहाज ले जाओगे, हमारा खजाना देखते ही तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। जाओ, दबाओ, जाओ।
चलो चलो चलो। और फिर वो मल्लाह अपने ठिंगने साथी को साथ लेकर वहां से चल पड़े और उसी दरख्त के नीचे आ गए जहां टार्जन छुपा हुआ था।
स्नाइप्स, वो ठीक कह रहा था। अगर खजाना हमारे जहाज से मिला तो हमें जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खजाने को बंदरगाह जाने से पहले छुपा देना चाहिए।
हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, वरना हम सबको फांसी लग जाएगी।
अच्छा अच्छा, जरा अपनी बकबक बंद करो, मुझे सोचने दो। चलो ऐसा करते हैं, सूरज गुरूब होते ही खजाने को यहाँ लाकर दबा देंगे।
हाँ,
और फिर बंदरगाह से खाने पीने का सामान लेकर वापसी में खजाने को ले जाएंगे।
हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। शाम को प्रोफेसर वगैरह जंगली जानवरों के डर से इस केबिन में दबके बैठे होंगे।
अंधेरे में वो हमें देख भी नहीं सकेंगे। चलो अब वापस चलते हैं।
चलो चलो।
इधर जब प्रोफेसर और साथी केबिन में दाखिल हुए तो
स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज।
ये तो बहुत अच्छे तले मरे होंगे। ये देखिए प्रोफेसर साहब, ये कपड़े भी गल चुके हैं। अरे, यहाँ तो रहने का सामान भी है और
ये किसी औरत का ढांचा मालूम होता है।
और ये देखो, यहाँ एक बच्चे का ढांचा सा मालूम देता है। गॉड हाउ ऑफुल।
मगर ये कैसे मरे होंगे? खाने पीने का सामान तो मौजूद है, राइफल भी है।
डैडी ये देखिए डायरी, इससे पता चलेगा कि ये लोग थे कौन।
दिखाओ जेन मुझे तो।
क्या लिखा है प्रोफेसर साहब?
विलियम, तुम्हारी तलाश अब खत्म हो गई है। ये तुम्हारे मरहूम चचा की डायरी है। और ये देखो, इसकी उंगली की हड्डी में ये अंगूठी।
मुझे दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, ये हमारी खानदानी अंगूठी है। आखिर 22 साल के बाद अंकल जॉन क्लेटन का पता चल ही गया। और ये यकीनन आंटी एलिस की लाश है। और वो उनका बच्चा।
नहीं विलियम, ये इंसानी बच्चे की हड्डियां नहीं है। ये खोपड़े देखो, ये इंसानी नहीं है। ये तो किसी बंदर या गोरिले के बच्चे की हड्डियां मालूम होती हैं।
मगर ये बंदर इस बच्चे के पलंग पर पहुंचा कैसे?
ये राज तो मरने वाले अपने साथ ले गए। चलो अब इन पर चादरें डाल दें।
कमाल है, इस डायरी में तो एक अजीब गरीब दास्तान लिखी हुई है। इसमें बच्चे का भी जिक्र है, मगर वो कहाँ है? क्या कोई जल्दी जाकर उसे उठाकर ले गया और खा पी गया?
अगर वो जिंदा होता तो आज वो एक नौजवान आदमी होता।
जी बिल्कुल, तकरीबन मेरी उम्र का होता।
खैर, जो अल्लाह को मंजूर। चलो रात होने से पहले इनको दफना दें।
उसी शाम टार्जन ने पहली दफा किसी को दफन होते देखा। प्रोफेसर पोर्टर और विलियम क्लेटन कब्र पर मिट्टी डाल रहे थे। जेन और हबशन खामोश खड़ी थी। टार्जन उन्हें मसरूफ पाकर चुपके से केबिन में दाखिल हुआ। वो ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि उसकी सारी चीजें उल्टी पुल्टी पड़ी हैं। अगर कोई और होता तो टार्जन उनको फौरन खत्म कर देता, लेकिन न जाने क्यों उसे इन सफेद चमड़ी वालों से कुछ हमदर्दी हो गई थी। उन्हें मारने के बजाय उसने उन्हें खबरदार करने का फैसला किया। एक कागज पर उसने अपनी टूटी फूटी लिखाई में लिखना शुरू किया।
ये टार्जन का घर है। टार्जन अपने दुश्मनों को मार देता है। खबरदार, जो टार्जन की किसी चीज को हाथ लगाया, टार्जन देख रहा है। गोरिलों का टार्जन।
ये कागज उसने दरवाजे पर लगा दिया और दरख्त पर छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर अपनी बेटी जेन और साथियों के साथ वापस आए तो।
अरे ये दरवाजे पर क्या लगा है?
मालूम होता है कोई पैगाम है। जरा पढ़ो तो बेटी।
ये टार्जन का घर है। टार्जन अपने दुश्मनों को मार देता है। खबरदार, जो टार्जन की किसी चीज को हाथ लगाया, टार्जन देख रहा है। गोरिलों का टार्जन।
ये गोरिलों का टार्जन कौन है?
कहीं ये वो तो नहीं जिसने स्नाइप्स को तीर मारा था?
अगर ये वही है तो फिर वाकई टार्जन हमें देख रहा है।
प्रोफेसर और उसके साथियों ने अंदर जाकर केबिन का दरवाजा बंद कर लिया। टार्जन नीचे उतरने ही वाला था कि उसे दूर साहिल पर एक कश्ती आती हुई नजर आई। वो शाखों से झूलकर साहिल के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि कश्ती में से कुछ लोग बड़े बड़े बक्स उतार रहे हैं।
जल्दी करो, जरा हाथ पैर हिलाओ।
हिला रहे हैं सरदार, मगर ये कमबख्त इतने भारी हैं।
भारी हैं, जभी तो यहाँ लाए। क्या खाली वक्त अपनाते?
सरदार, कोई जगह ढूंढी भी है या नहीं? ये खजाने कहाँ दबाएंगे?
तुम्हारे सामने
क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ कि जगह ढूंढे बगैर खजाने याद नहीं आता?
माफ करना सरदार, मैं तो यूं ही पूछ रहा था।
बकवास बंद करो, मेरे साथ आओ। वो जो सामने दरख्तों का झुंड है वहां दफनाएंगे।
प्रोफेसर के फरिश्तों को भी खबर न होगी कि उसका खजाना कहां गया।
चलो चलो
चल।
टार्जन ने स्नाइप्स और उसके आदमियों को खजाना दबाते देख लिया। जैसे ही वो कश्ती में बैठकर वापस हुए, टार्जन दरख्त से उतरा। उसने एक एक करके खजाने के तमाम बक्स निकाले और उन्हें ले जाकर दूर घने जंगल में जहां गोरीले रहते थे वहां दरख्त के नीचे दबा दिए। दूसरे दिन नाश्ते के बाद जेन और प्रोफेसर में बहस होने लगी।
बेटी, ये लंदन नहीं है कि तुम बेखौफ खतर जहां चाहो घूमती फिरो। ये अफ्रीका का जंगल है, न जाने कितने जंगली जानवर आसपास फिर रहे होंगे।
मगर डैडी, हम सारा दिन केबिन में बंद होकर नहीं बैठ सकते।
जेन ठीक कह रही है प्रोफेसर साहब, आखिर हमें किसी दिन तो बाहर निकलना है। हम कब तक यहां बेबस बैठे रहेंगे? हमें बाहर निकलकर मदद हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। यकीनन यहां आसपास कोई ना कोई इंसानों की बस्ती जरूर होगी, वहां हम पनाह ले सकेंगे और उनकी मदद से हम नजदीकी बंदरगाह पर पहुंचने की कोशिश कर सकेंगे।
मगर हम जेन को लेकर जंगल में कैसे जाएंगे?
ये केबिन बिल्कुल महफूज है। चलिए हम दोनों चलते हैं, और जेन आप ये दरवाजा अंदर से बंद कर लें।
बेटा विलियम, बंदूक साथ लेना मत भूलना, ना जाने कैसे कैसे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ेगा।
डैडी, मैं भी साथ चलूंगी।
नहीं जेन, आपका भी जाना ठीक नहीं है। आप और फिलोमिना यहीं रहो। क्यों, ठीक है ना प्रोफेसर साहब?
हाँ ये ठीक है, मगर अपने साथ बंदूकें जरूर ले लेनी चाहिए।
हाँ ये लीजिए, और सुनो तुम दोनों दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना।
आप फिक्र न करें विलियम, हमें कुछ नहीं होगा। याद है, टार्जन हमें देख रहा है।
टार्जन वाकई उन्हें देख रहा था, क्योंकि वो तो सुबह से केबिन के पास एक दरख्त पर छुपा बैठा था। वो इन लोगों की हर हरकत पर नजर रखना चाहता था, क्योंकि वो उसे अपने जैसे लगते थे। जब उसने प्रोफेसर और विलियम क्लेटन को घने जंगल में जाते देखा तो वो उनका पीछा करने लगा। उसे मालूम था कि अगर जंगली जानवरों ने उन पर हमला कर दिया तो वो सही तौर पर अपनी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। प्रोफेसर पोर्टर और विलियम क्लेटन जंगल में झाड़ियां काटते हुए बढ़ते जा रहे थे। वो बेखबर थे कि टार्जन दरख्तों को फलंगता हुआ उनका पीछा कर रहा है।
विलियम, मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर हम जुनूब की तरफ चले तो हमें किसी न किसी बस्ती में पहुंच जाना चाहिए, जहां अंग्रेजों की हुकूमत होगी और वहीं से हमें मदद मिल जाएगी।
ठीक है प्रोफेसर साहब, चलिए इस तरफ को चलते हैं।
खुदा गारत करे इस स्नाइप्स को, हमारा सारा खजाना भी चुरा लिया और हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। विलियम बेटे, तुम तो अब पछता रहे होगे कि तुम हमारे साथ इस खजाने की तलाश में क्यों निकल पड़े।
नहीं प्रोफेसर साहब, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे इसकी फिक्र ज्यादा थी कि आप अपना और जेन का ख्याल नहीं रख सकेंगे। खजाना मिलने की उम्मीद तो मुझे कम ही थी और उसके खो जाने का गम भी कोई खास नहीं, लेकिन अगर आपको और जेन को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना करता।
तुम सबको खजाना मिलने की उम्मीद कम ही थी, लेकिन बेटे मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। आखिर हमें खजाना मिल ही गया ना। मुझे यकीन था कि वो नक्शा असली है और वही हुआ। कितनी आसानी से हमने खजाने को ढूंढ निकाला, मगर क्या पता था कि हमारा ये अंजाम होने वाला है। तुमने हमारा बड़ा साथ दिया बेटे, मुझे इसका बड़ी शिद्दत से एहसास है, और जेन को भी।
छोड़िए इन बातों को, अब तो किसी न किसी तरह इस बियाबान जंगल से निकलना है। ये लीजिए, इस झील को कैसे पार किया जाए।
दोनों झील के किनारे खड़े सोच रहे थे कि टार्जन को उनके पीछे से एक आहट सुनाई दी। वो फौरन समझ गया कि ये उसका पुराना दुश्मन नूमा है। नूमा एक खौफनाक बबर शेर था। वो इस वक्त भूखा था और शिकार सामने नजर आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता नूमा झील के किनारे उगी हुई लंबी घास में उनकी तरफ बढ़ रहा था। टार्जन ने ऊपर से उसे देख लिया और अपना चाकू अपने दांतों में दबाकर दोनों हाथों से लटकता हुआ शेर और उन लोगों के दरमियान में पहुंच गया। नूमा अब हमले की तैयारी कर रहा था। उसका पेट जमीन से लग चुका था। उसने अपने पिछले पैर समेट लिए और गोली तो चलाई लेकिन वो शेर के कंधे से छूटी हुई निकल गई। गुस्से से पागल हो गया। उसने पलट कर फिर से हमला करना चाहा। हाथों से बंदूक में दूसरी गोली डालने की कोशिश कर रहा था। अचानक दोनों ने एक अजीब मंजर देखा। एक देव तकरीबन नंगा इंसान हाथ से शेर की पीठ पर आकर गिरा। उसने अपने पांचों से शेर की गर्दन को दबोच लिया। उसने अपने पांचों से शेर की गर्दन को पीछे की तरफ एक तोड़ से खींचा। शेर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। उस शख्स ने एक बाजू शेर की गर्दन से अपने मुंह से चाकू निकाला और एक दो तीन चार और शेर के सीने में लेकिन टार्जन ने उसको चपेट रखा। लेकिन क्लेटन सहमे हुए हैरत की नजारा देख रहे थे। आखिर शेर के बदन ने एक जबरदस्त चुड़गिरी ली और धड़ाम से उसकी लाश जमीन पर जा गिरी। टार्जन ने अपना चाकू उसके सीने से खींचकर उसे घास से साफ करके अपनी कमर से लटका लिया। विलियम ये सोचने लगा कि ये अजीब इंसान कौन हो सकता है। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं ये वो शख्स तो नहीं जिसने स्नाइप्स को तीर मारा था और फिर केबिन के दरवाजे पर वो पर्चा लगाया था। अगर ये वही इंसान है तो यकीनन ये अंग्रेजी भी जानता होगा। उसने आगे बढ़कर अंग्रेजी में उसका शुक्रिया अदा किया मगर उसने न कोई जवाब दिया और न ही उसके चेहरे से ये जाहिर हुआ कि उसको विलियम की बातें समझ में आ रही हैं कि अचानक
ओह माय गॉड, जेन खतरे में है, विलियम अब क्या करे।
टार्जन ने फौरन उनको पीछे आने का इशारा किया और तेजी से केबिन की तरफ रवाना हो गया। प्रोफेसर और विलियम उसके पीछे भागने लगे। उधर केबिन में जेन और रोमिना एक कोने में खड़ी खौफ से कांप रही है। जेन के हाथ में एक पिस्तौल था जो उसने अभी अभी चलाया था। से केबिन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने सर से खिड़की की लकड़ी की बनी हुई सलाखों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तोड़ने की कोशिश कर शेरनी ने अपना सब पीछे कर लिया मगर एक लम्हे के बाद ही वो फिर खिड़की पर आ गया। जब था उठाकर उसके मुंह पर फेंकी जा रही शेरनी ने टार्जन के साथ खिड़की को धक्का दिया। खिड़की अब तकरीबन टूट कर गिरने वाली थी। इसके बाद क्या हुआ? क्या शेरनी केबिन में आ गई? क्या शेरनी ने जेन पर हमला कर दिया? क्या जेन ने शेरनी को मार दिया? टार्जन की कहानी का बाकी हिस्सा कैसेट कहानी नंबर 11 में सुनिए। याद रखिए कैसेट कहानी नंबर 11 और भूलिए नहीं असली कैसेट कहानी फरीद अहमद की कैसेट कहानी।